कृष्णा। तो मैंने कहा कि आप सबका बरसाना धाम में स्वागत है। तो कुछ बातें मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम धाम की यात्रा में आए हैं, और एक होती है तीर्थ यात्रा, इसमें फर्क होता है। धाम वो है जो भगवान का खुद का घर है, उसको निज धाम कहते हैं, और तीर्थ वो है जो अपना धाम छोड़कर जब भगवान कहीं जाकर लीला करते हैं तो उसको तीर्थ कहते हैं। अयोध्या धाम है और नासिक तीर्थ है, समझ में आया? क्योंकि अयोध्या उनका घर है, वहां से वो निकलकर उन्होंने वनवास आदि का लीला किया, तो वो बाकी सब तीर्थ है और अयोध्या धाम है। तो श्री वृंदावन जो है वो परम धाम है, क्योंकि भगवान का परम स्वरूप जो है श्री कृष्ण का है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो परम भगवान का परम धाम गौलोक वृंदावन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो पृथ्वी पर अवतरित होता है श्री वृंदावन धाम के रूप में। हमारे संप्रदाय में, जिस संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय, इसमें सबसे प्रधान जो आचार्य हुए हैं उनका नाम है रूप गोस्वामी। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें से एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें उन्होंने भक्ति के 64 तत्वों का वर्णन दिया है, प्रमुख सर्व अंगों का वर्णन किया। उन 64 अंगों में 6 अंग जो है वो सबसे प्रधान है। हाँ, मैंने सबको विनती की थी कि आप लोगों को नोटबुक लेके आना चाहिए, क्योंकि कलयुग में मेमोरी 0 है। अभी बताएंगे, बाद में कुछ याद नहीं आएगा। जिसके पास मोबाइल है वो हाईटेक लोग मोबाइल में लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि अभी मैं जब बताऊंगा आपको ऊपर जाएंगे सब भूल जाएंगे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर कलयुग में मेमोरी अच्छी होती तो वेदव्यास जी ने शास्त्रों को लिखा नहीं होता। पहले तो सुनकर सुनते थे और सुनकर याद रखते थे, सब लोग श्रुतिधर थे, श्रुति को धरने वाले। लेकिन उन्होंने देखा कलयुग में किसी को याद नहीं आने वाला है, तो उन्होंने बैठकर हिमालय में बैठे एकांत में और सब लिख डाला, जो जो लिखना चाहिए सुनना चाहिए वो लिख डाला, और वो हमारे लिए वेद के रूप में उपलब्ध है। आया समझ में आपको? तो वो 64 तत्वों में से 6 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तत्व है भगवान के नाम का जप, हरिनाम, भगवान के नाम का संकीर्तन। दूसरा है भगवान के भक्तों का संग, सत्संग जिसको कहते हैं, तो भगवान के विषय में किया जाता है। तीसरा है भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करना, यानी कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, फिर आगे रामायण महाभारत, बहुत सारे उपनिषद हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। चौथा इंपॉर्टेंट तत्व है भगवान के विग्रहों की सेवा करना, यानी कि मंदिरों में हम देखते हैं ना भगवान के विग्रह होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, उन विग्रहों की सेवा करने की पद्धति होती है ताकि भगवान से हम नजदीक जा सकें, तो उसको कहते हैं अर्च विग्रह पूजा। और पांचवा है धाम का निवास, और छठवा है तुलसी की पूजा। ये 6 तत्व जो है, अगर 64 नहीं तो ये 6 तो पालन करना ही है, ज्यादा कम पैमाने पे हो सकता है लेकिन पालन तो करना ही है। इसमें पांचवा तत्व जो है धाम वास है, धाम का वास। अगर आपका जन्म यहां पर हुआ है तो परमानेंटली यही रहेंगे आप, अगर आपका जन्म धाम के बाहर हुआ है तो हम सब कुछ छोड़ के धाम में आके बस सकते हैं। दूसरा प्रकार हो गया, पहला प्रकार जन्म से धामवासी, दूसरा प्रकार जन्म कहीं और लेकिन बाहर से आके बस रहे हैं, यहां पर घर बनाकर सब कुछ छोड़ के यहीं रह रहे हैं, और तीसरा प्रकार हम सब लोग कुछ समय के लिए आ रहे हैं, इसको यात्रा कहते हैं। यात्रा में भी हम धाम में रह रहे हैं, मतलब धाम का निवास कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आप लोग भी धामवासी हो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। और अगर हम बाहर जन्म ले चुके हैं और बाहर ही रहते हैं परमानेंटली, तो हर एक गृहस्थ आश्रमिक व्यक्ति के लिए साल में कम से कम एक बार सब कुछ छोड़ के, सब कुछ पीछे रख के धाम में आना चाहिए, कभी वृंदावन, कभी मायापुर, कभी जगन्नाथपुरी, कभी अयोध्या, कभी द्वारका, कभी जयपुर, नासिक, जैसे भी हो, ये बहुत अनिवार्य है। क्योंकि हम लोग अपने घर गृहस्थी में बहुत फंसे रहते हैं, पत्नी परिवार धन बिजनेस नौकरी जो भी कुछ है बहुत सारा काम रहता है, और आजकल 8 घंटे काम करने से किसी का पेट नहीं भरता है, फिर ओवर टाइम करना पड़ता है, फिर डबल ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर लोन लेना पड़ता है, फिर फलाना चीज़ है, दो दो मोबाइल चाहिए, दो दो गाड़ी चाहिए, तो वो क्या होता है ना, पर्याप्त तो होता ही नहीं कभी भी। तो इस चक्र में पूरी जिंदगी बीत जाती है। कभी कभी अब बचपन में थे, अभी बूढ़े हो गए, समझ में नहीं आया कब क्या इतना जंजाल है पूरा प्रपंच का। तो इसलिए ये सारे जंजाल में रहते हुए भजन करना है भगवान का, लेकिन सब कुछ छोड़ के निवृत्त होकर कुछ समय के लिए क्यों ना हो धाम में आकर निवास करना है। क्या करने के लिए धाम में जब आ रहे हैं, आप तो कोई ड्यूटी है 9 to 5 नहीं ना, दिन रात केवल भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान के धाम में घूमना है, प्रसाद पाना है, कीर्तन करना है, यज्ञ करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, बस यही करना है, कुछ नहीं करना होगा। तो फुल टाइम अगर कुछ समय के लिए करेंगे तो उसको हम यात्रा कहते हैं। अभी आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है पिकनिक, हम लोग बाहर जाते भी सब कुछ छोड़कर, माथेरान महाबलेश्वर जाते हैं ना हम लोग, वहां पर क्या करते हैं। तो पिकनिक में और यात्रा में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको, ये बहुत लंबा लंबा विषय है लेकिन आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ। यात्रा का मतलब क्या है, जिस आउटिंग में मतलब बाहर जा रहे हैं आप घर से, उस आपके छुट्टी में आप क्या कर रहे हो, भगवान को केंद्र स्थान में रख रहे हो और उस जगह जा रहे हो जहां पर आपको भगवान को अपने आप को अर्पण करना है, उनका आश्रय लेना है, उनका शेल्टर लेना है। हाँ, दूसरी बात है कि भगवान का शेल्टर लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। अगर आपके आप भगवान के धाम में अभी आए हो, 8 दिन का टाइम निकाल कर आए हो, 2 दिन सफर करेंगे, 10 दिन का टाइम निकाल कर आए हो, और यहां पर आकर अगर भगवान का नाम का जप नहीं करते हैं तो आपकी, मैं अभी से बताता हूं, आपकी यात्रा पूर्ण तरह से फेल है, कंप्लीटली फेल है, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। जैसे मोबाइल लिया आपने बहुत बड़ा, हो सकता है 25,000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, लेकिन कनेक्शन सिम कार्ड लिया ही नहीं उसका, वो एक चीज छोड़ के सब कुछ लिया, उसके अंदर गेम है, पिक्चर है, यूट्यूब है, यूट्यूब कैसा आएगा बिना कनेक्शन का, तो ये बेकार हो गया ना, अगर इसमें सिम कार्ड नहीं है तो ये बेकार हो गया। उसी तरह से यात्रा में आप आ गए और भगवान का नाम का जप नहीं किया आपने, आपके पास माला नहीं है, आपके पास झोली नहीं है माला की, तो आपकी यात्रा पूर्णता से अभी से बता रहा हूं बेकार है, फुल अभी से बेकार है, यूजलेस, फ्रूटलेस, फल के बिना है पूरा निष्फल। तो यात्रा कब होती है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के भक्तों का सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, उसको चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मुंबई में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में सोचते नहीं है, पूरा इधर अपना दिल लगाते हैं, एकाग्र होकर अगर यात्रा में भाग ले रहे हैं तो उसको हम यात्रा कह सकते हैं। यात्रा में सत्संग होता है, प्रार्थना होती है, दर्शन होता है, भक्तों का संग होता है, भक्तों के साथ मैत्री हो जाती है, नए नए भक्त मिलते हैं ना, सब भक्त तो है, सबकी नई नई पहचान हो जाती है, संग बढ़ता है भक्ति का। और यात्रा संपन्न कैसे होगी अभी बता देता हूं आपको, आपको खुद को सर्टिफिकेट देना है एंड में। अगर आपको 8 दिन की यात्रा में अगर लगा कि अरे यात्रा समाप्त क्यों हो रही है, समाप्त क्यों हो रही है, ऐसे चलते रहना चाहिए, मुंबई आने का समय नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा तो हो सकता है आपकी यात्रा सफल है। अगर आप यात्रा से जाते वक्त रोएंगे कि मैं क्यों जा रहा हूं तो आपकी यात्रा सफल है। और अगर आप सोचेंगे क्या यात्रा में सुविधा नहीं था, गर्म पानी तो मिला ही नहीं, एक दिन मिला, एक दिन नहीं मिला, वो दिन स्वीट ही नहीं मिला, वो दिन बस में फ्रंट सीट नहीं मिला, ऐसा अगर आप कंप्लेंट के मूड में आएंगे, अभी से आप सोच लेना कि आपका यात्रा निष्फल हो गया। तो आपको सबको अपना अपना परीक्षा लेना है एंड में, निकलते समय आपके मन में क्या विचार है। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपका यही है यात्रा सफल होने का, कि आपके मन में कृतज्ञता का भाव होगा, धन्यवाद का भाव होगा, थैंक यू का भाव होगा, थैंक यू भगवान के लिए कि आपने हमको अपने धाम में बुलाया, अपने धाम में निवास दिया, कथा सुनाई आपकी, आपकी लीलाओं का स्थानों का दर्शन कराया, और बहुत लोगों ने मेहनत किया और हम लोग ने उसका आनंद लिया, सब लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने हमारे लिए मेहनत किया। ऐसा अगर कृतज्ञता का भाव आपके हृदय में होगा, थैंक यू भाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रैटिट्यूड, अगर वो होगा तो आप यात्रा आपकी खुद ही सर्टिफिकेट देना आपको अपने आपको कि सफल हो गया आपका। और पिकनिक क्या होती है, पिकनिक में खुद केंद्र स्थान में होते हैं, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलना चाहिए, हाँ, और लग्जरी मिलना चाहिए, बाकी लोगों से मुझे सेवा मिलनी चाहिए, और मैं दुखी भी हूँ, और मुझे टीका करने का दिल भी कर रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और मेरे मन में असमाधान है, असंतुष्टि है, तो आपकी यात्रा निष्फल है। पिकनिक में खुद के आनंद की प्रधानता होती है, और यात्रा में भगवान के आनंद की प्रधानता होती है, उनके उनको सुख देने के लिए हम लोग यहां पर आते हैं, पिकनिक में खुद को सुख देने के लिए जाते हैं। ये सब परिणाम, ये जो फर्क है ना, पहले से आप समझ लेना, और पिकनिक वाले बनना छोड़कर यात्री बन जाने का पहले से प्रयास करना। अगर आप यात्री बनकर जाएंगे तो आपको समाधान मिलेगा, आनंद मिलेगा, कृतज्ञता मिलेगी, खुशी मिलेगी, बहुत सारा कुछ मिलेगा। और पिकनिक वाले बनकर जाएंगे तो अभी से दुखी होकर जाएंगे, क्योंकि यहां पर असुविधा के बिना यात्रा नहीं होती है। तपस्या यात्रा का एक अनिवार्य अंग है, और यात्रा में असुविधा होती है, क्योंकि असुविधा होने से हृदय की शुद्धि होती है। असुविधा होने पर भी जब हम लोग थैंक यू कहते हैं तो आत्मशुद्धि होती है और भगवान की दिशा में प्रगति होती है। एक और बात है कि हम लोग ऐसे बनाकर यहां पर प्लानिंग बनाते हैं, मुंबई से कई महीने से प्लानिंग चल रहा है, क्या करना है, कैसे खाना है, कहां पर रुकाना है, कैसे ट्रैवलिंग करना है, बहुत सारी योजना बनाते हैं। और हमारा अभी 25 साल का अनुभव ये बताता है कि हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन बहुत सारा प्लानिंग फेल हो जाता है। जैसे अगर ट्रेन 4 घंटा लेट हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा हमारा टाइम टेबल फ्लॉप हो सकता है। अचानक बारिश आ गई, धाम में क्या होता है क्या नहीं होता है इसका पता नहीं चलता है। सर्दी के मौसम में जब बारिश नहीं पड़नी चाहिए, घनघोर वर्षा होती है, हमारे कैंप में तंबू उड़ जाते हैं। अभी अगर अयोध्या का निकाल लगा ना 2 दिन पहले, तो अगर दंगा फंगा होता तो हमारी यात्रा का पूरा प्लान फेल हो जाता है ना। लेकिन भगवान की कृपा है कि धाम में कुछ गड़बड़ नहीं है, आराम से घूम सकते हो आप। कहना कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रैफिक जाम हो सकता है, ट्रेन बंद पड़ सकती है, लाइट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि धाम में कंट्रोलर नियंत्रक स्वयं भगवान है, और भगवान अपने धाम के मालिक होने के नाते आप लोगों को उनके घर का कौन सा हिस्सा दिखाना है ये वो तय करते हैं। हम लोग प्लानिंग बना दे, अपना प्रपोजल देते, एप्लीकेशन देते, हमको ये देखना है आपके घर का, क्योंकि उनका घर है ना ये, निज धाम मतलब उनका घर है, उनके घर में क्या क्या देखना है ये हम प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन क्या क्या दिखाना है वो सैंक्शन करते हैं। इसलिए असुविधाएं होती रहती है। जैसे मैं अभी आ रहा था, कितनी गाड़ियां रस्ते पे खड़ी थी, उतर उतर के बोलना पड़ा, हटो भाई हटो, अभी ऐसे हो सकता है, लेकिन उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखो और बाकी सब छोड़ दो। दूसरी बात है धामवासी, जो धाम में जन्म लेता है वो राधा रानी और कृष्ण भगवान के अनन्य कृपा के कारण जन्म लेता है। पिछले एक अनंत जन्मों में जिसने भगवान की सेवा की है, वैष्णवों की सेवा की है, धाम सेवा की होगी या नहीं होगी, लेकिन वैष्णवों की सेवा की है, भगवान की सेवा की, अनंत पुण्य प्राप्त किए हैं, और जो राधा रानी और कृष्ण को प्रिय है उन्हीं को धाम में जन्म मिलता है, कोई बाय चांस बाय फ्लूक नहीं होता है। और जो धाम में जन्म लेता है, जैसे वृंदावन धाम है, उस व्यक्ति का ये आखिरी जन्म है, इस जन्म के बाद वो गौलोक धाम पहुंच जाएगा, इतना दिव्य जन्म है। और धाम वासियों को भगवान हमेशा बहुत ही क्या कहते हैं उसको, डिफिकल्ट अवस्था में रखते हैं, ज्यादा धन नहीं होता है, ज्यादा सुंदरता नहीं होती है, ज्यादा पावर नहीं होती है, जो प्रामाणिक भक्त हैं, क्योंकि उनको भगवान चाहते हैं कि उनको गर्व ना हो किस चीज का। गर्व किस चीज का होता है, सबसे बड़ा धन का गर्व होता है, उसके बाद विद्या का गर्व होता है, उसके बाद रूप का गर्व होता है, उसके बाद पावर का गर्व होता है ना, ये मेन गर्व है। तो इन गर्वों से वो सब दूर रखते अपने भगवान भक्तों को, ताकि उनका मन सौंदर्य धन विद्या अधिकार इससे हटकर उन पर ही बना रहे, ऐसी व्यवस्था रखते हुए, तो भगवान की व्यवस्था है। इन शॉर्ट सारांश में कहा जाए तो धाम वासी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, यानी यहाँ के लोग। और आपको यात्रा सफल करनी है, किसी भी धाम वासी का अपराध नहीं करना। अपराध करने का मतलब क्या है? उनका दिल नहीं दुखाना। अब वाद विवाद हो सकता है रिक्शा वाले के साथ, इसके वाले के साथ, लेकिन उनको दिल में दर्द पहुंचे ऐसा व्यवहार नहीं करना है। या किसी प्रकार से धाम वासी के साथ झगड़ा नहीं करना है, उनको दुख नहीं देना है, क्योंकि वो यहाँ के वासी हैं। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, उनके घर में आए हुए हैं। उनका सम्मान करना, उनको वंदन करना, क्योंकि वो भगवान के धाम के वासी हैं, उनको वंदन करना, सम्मान पूर्वक व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उनका अपराध करते हैं, वहीं वहां पर भी आपकी हमारी यात्रा फेल हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए धाम वासियों को अपराध नहीं करना है और भगवान के नाम का सतत जप करना है। अभी भी मुझे याद है 1986 में जब दिसंबर में हमारे मंदिर से सबसे पहले यात्रा हुई थी हमारे गुरुदेव के साथ, तो हमारे गुरुदेव वहां पर हमको मथुरा स्टेशन में लेने के लिए आए थे और वहां पर उन्होंने हमको स्टेशन पर ही एक वेलकम लेक्चर दिया था। बहुत सारी बातें गई थी इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें से एक इम्पोर्टेंट बात मैं हर यात्रा में बताता हूँ, वो ये है कि धाम में प्रवेश करने से, यानी कि स्टेशन से उतरने से, उस क्षण से वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठने तक एक चीज परमानेंट करते रहनी चाहिए। अगर आपको यात्रा सफल करनी है तो राधा रानी को हृदय में निरंतर प्रार्थना करते रहनी चाहिए, कृपा याचना करनी चाहिए। राधा रानी की कृपा को पुकारते हुए हर क्षण चलना है। वो अगर आपको हर क्षण करना है तो आपकी बाकी सारी दुय्यम चीजों को दुर्लक्ष करना है। आपको कुछ मिला नहीं मिला जो भी ठीक है, हम लोग तो बम्बई में कंफर्टेबल रह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कंफर्टेबल रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर भगवान को मिलने के लिए आए हैं। तो भगवान को मिलने के लिए जब आते हैं तो हमारी कंफर्ट सब छोड़ना पड़ता है हमको। कभी कभी जो घर में सुविधा आपकी है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, तो हम लोग तय करके आए हैं उसको छोड़कर यहाँ पर आए हैं। जैसे भगवान रखेंगे उनके घर पे वैसे रहना है, जो चीज दिखाएंगे उसको देखना है, जो सुनाएंगे उसको सुनना है, उसी में धन्यवाद को अपनाना है। ओके, उसके बाद में मैंने सबको बार बार मैसेज भेजा है आपको, जो SMS में आता है ना मैसेज, वो मैं ही भेजता हूँ, ये भी ध्यान रखना, आगे भी यात्रा में मैं ही भेजूंगा। तो मैंने लिखा था कि सब लोग माला और झोली लेके आना, पर माला झोली नहीं होगी हमारे पास, स्टॉल लगा है क्या? किधर गए हमारे मुलराम? हाँ, आश्रम में स्टॉल लगा हुआ है, हर व्यक्ति को माला अपने हाथ में लेनी है, उसमें आपको जप करना है। क्योंकि हम लोग मुंबई में जप करते हैं नहीं करते हैं, हमारा व्यस्तता होती है, लेकिन धाम में भगवान को जब मिलने आए हैं तो उनका कनेक्शन तो होना चाहिए ना। अभी आपको कॉल करना है तो आपका नंबर से मुझे डायल तो करना पड़ेगा ना, तब आपकी बात होगी मेरी। नहीं, मुझे बात करना है, बात करना है, बात करना है, करना है, बोलने से बात होती है क्या? नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए और कॉन्टेक्ट करना चाहिए, पर नंबर लगेगा आपने उठाया तब बात होगी। कितने स्टेप हो गए उसके अंदर। तो वैसे धाम में आ गए, ट्रेन लिया, रूम बुक कर दिया, खाने की व्यवस्था किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको पुकारा ही नहीं तो कैसे कनेक्शन होगा? सबसे पावरफुल जो प्रिंसिपल है 64 में से 6 में से सबसे पावरफुल, वो क्या है? भगवान के नाम का जप। कलौ केवल नाम आधारा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं कलयुग में भगवान के नाम के अलावा। आपको तपस्या करने के कोई नहीं बोल रहा है, घरदार छोड़ के संन्यास के लिए कोई नहीं बोल रहा है, धन दौलत छोड़ने के लिए भी कोई नहीं बोल रहा है। गृहस्थी में रहो, जो कर रहे हो करो, लेकिन एक ही बात कही गई है, भगवान के नाम का जप करते रहो। जो भगवान के नाम का जप करेगा उसी को देखकर भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी धाम अपराध और एक चीज है, धाम का अपराध, धाम को साधारण समझना। अरे आप बोले क्या गंदगी है, क्या गटर है, क्या सुअर घूम रहा है इधर, क्या टेंटो चल रहा है, क्या धूल उड़ रही है, इस तरह से धाम को साधारण समझना अपनी दृष्टि से, दूषित दृष्टि से, ये धाम अपराध है। क्योंकि धाम दिव्य होता है, वो हमारे नजरों से ओझल है अभी, क्योंकि हम लोग इतने पवित्र और शुद्ध नहीं है। जब पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे तो इसके परे जो धाम है वो आपको दिखाई पड़ेगा, और धाम को अभी हमको आंखों से कम और कानों से ज्यादा सुनना है। कानों के माध्यम से सुनकर धाम को देखना है, वो कानों के माध्यम से सुनकर उसका गौरव सुनेंगे तो एक दूसरी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अभी समझो आप यहां बैठे, हो सकता है आप ग्रीस देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन मुझे पता नहीं, बैठे सुन रहे कथा, और आपको मैं देख रहा हूं अभी कि सामने व्यक्ति बैठा है कथा सुन रहा है, लेकिन कथा के बाद पता चलेगा कि हमारी यात्रा में ग्रीस के प्रधानमंत्री भी हैं, तो है ना, कौन थे वो, किधर है, तो इनको दिखाएंगे, तब मेरे इनको देखने की दृष्टि बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्यों बदलेगी? क्योंकि इनके विषय में मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। पहले ज्ञान नहीं था कि कौन है, अभी ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये प्रधानमंत्री है ग्रीस देश के, तो मेरी उनको देखने की दृष्टि बदल जाएगी। उसी प्रकार से आप सबको कृष्ण कृष्ण को जानते हैं, लेकिन अभी आप सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे तो आपकी दृष्टि कृष्ण को देखने की बदल जाती है, बदल सकती है, और वो बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और दृष्टि बदलने के लिए पहले क्या करना होता है? सुनना पड़ता है, श्रवण पहले, फिर हमारी दृष्टि बदल सकती है। दूसरा धाम अपराध यह है, ये आपको बताना जरूरी है शुरुआत में, क्योंकि आप अभी 8 दिन रहेंगे और अनजाने में कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, इसलिए सबको आपको सावधान कर रहा हूं। धाम में रहकर पाप करना ये बहुत भयंकर चीज है। समझो कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, तो बंबई में खाएगा, दिल्ली में खाएगा, तो उसको एक पाप लगेगा, पाप तो लगेगा ही, लेकिन अगर वो यहां आके खाएगा ना, तो 100,000 बार वो पाप गुणित किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपको लगेगा रोज की आदत है, उसमें क्या है, लेकिन यहां आने पर वो पाप आपके नाम पे 100,000 गुणित जमा किया जाएगा, और वो कोई भी पाप हो, किसी को बुरा भला कहा 100,000 गुणित, धामवासी का अपराध किया 100,000 गुणित, जो भी पाप किया, चोरी किया, कुछ लूटा, किसी को कुछ गलत बोल दिया, किसी का झगड़ा कर दिया, 100,000 गुणित। रामचरित प्रभु धाम में सोया कथा में तो भी 100,000 गुणित। हरे कृष्णा, ध्यान रखना इस बात का। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धाम जो है ना, वो भगवान है स्वयं। भगवान के 4 रूप हैं, एक उनका नाम, दूसरा उनका रूप, तीसरी उनकी लीला, और चौथा उनका धाम। ये 4 चीज, नाम, रूप, लीला, धाम, ये भगवान से अभिन्न है। एक ही फर्क है उनके अंदर, वो भगवान से ज्यादा पावरफुल है दया के विषय में, करुणा के विषय में। वो 4 चीज जो है, नाम, रूप, लीला, धाम, भगवान से भी अधिक पावरफुल है। तो धाम व्यक्ति होने के कारण वो अपने आप को तब प्रकट करेगा जब हमारे हृदय में शुद्धि पैदा होगी, पवित्रता उत्पन्न होगी। जितने हम पवित्र होंगे हृदय से, निर्मल होंगे, निष्कपट होंगे, निष्पाप होंगे, उतना धाम आपको ज्यादा अपने आप को प्रकट कराएगा। और जितना हम लोग कपटी होंगे, क्या कहते हैं उसको, दुतप्पी होंगे, द्वंद्ववादी होंगे, मन में अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा होगा हमारे अंदर, या हमारे बुरी आदतें होंगी, हमको तंबाकू खाने की आदत है, हमको शराब पीने की आदत है, हमको मांस खाने की आदत है, जितनी अशुद्धि हमारे अंदर होगी उतना धाम अपने आप को बंद कर देगा। कंसील कहते हैं उसको, कंसील। अगर कंसील धाम को अगर खोलना है आपको, तो हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि धाम ना विशुद्ध सत्व गुण में होता है। हमको तमोगुण से, रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में आना है, और सत्वगुण के भी परे जो विशुद्ध सत्वगुण है उसमें भगवान और धाम निवास करते हैं। तो उनको अगर समझना है तो हमको भी उस लेवल पे जाना होगा। अगर कोई कोई जैसे कोई बड़ा सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन है, अगर आप डॉक्टर होंगे MBBS, तो आप कौन सा सर्जन अच्छा है ये अच्छी तरह जान सकते हो, है कि नहीं? समझो आपको कोई हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो मुझे आप फोन करोगे, सर डॉक्टर कौन सा है, 4 डॉक्टर का नाम दिया, इसमें से बेस्ट कौन है, तो कौन बता सकता है? जो उस फील्ड में है वो आपको बता सकता है। उसी तरह से भगवान का भी वैसा ही विषय है, जो सत्वगुण में स्थित है वो आपको विशुद्ध सत्वगुण में क्या है उसके बारे में जानकारी दे सकता है, लेकिन जो तमोगुण में, रजोगुण में है, वो सत्वगुण में क्या रखा है उसको नहीं पता चलेगा, उसको आप पहले उधर आना पड़ेगा। हाँ, इसके पीछे क्या है ये समझने के लिए इसको पहले चढ़ना पड़ेगा, फिर पीछे का दिखाई पड़ेगा। यहां बैठ के उसके पीछे क्या है दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हेलीकॉप्टर में जाकर दिखाई पड़ेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, मतलब हमको ऊपर उठना पड़ेगा अगर कुछ चीज समझना है, तो नीचे रहकर उस चीजों को हम समझ नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धाम ऐसी वस्तु है, विशुद्ध सत्वगुणी वस्तु है वो, उसको समझने के लिए खुद को भी विशुद्ध सत्वगुण को निर्माण करना पड़ेगा, और वो करने के लिए हम लोग जप करते हैं। अभी 40 साल हो गए जप कर रहे हैं, अभी भी क्यों कर रहे हैं? अरे 40 साल का कोर्स पूरा हो गया जप का, जो खत्म करो। नहीं, जप एक निरंतर धर्म है हमारा। जैसे हम रोज भोजन करते हैं 3 बार। आपने कहा अरे माता जी 60 साल खाना खाया आपने, अभी भी खा रहे हो? ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, जब तक जीवन है तब तक खाना पड़ेगा, तब तक हवा लेनी पड़ेगी, तब तक नींद भी लेनी पड़ेगी। उसी तरह से जब तक आप आत्मा हो, जब तक आप यहाँ पर जी रहे हो, तब तक भगवान से नहीं मिले हो, तब तक आपको भगवान का नाम लेना ही है। और भगवान को मिलने के बाद भी उनका ही नाम लेते हैं, वहां पर भी गोलोक धाम में, और क्या करना है, उनको ही पुकारना है। तो ये चिरंतन कार्य है हमारा, भगवान का नाम का पुकारना। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जिस जगह पर पाप होता है या जिस जगह पर पापी व्यक्ति पहुंचता है, उसको उस जगह का महात्म्य नहीं समझता है। और हम लोग परम पवित्र स्थान पर आए हुए हैं, इसमें इतना पवित्र है, इतनी दिव्यता है, उसको ग्रहण करने के लिए हम आए हैं। हमारा पात्र कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना ग्रहण करेंगे आप। कितना बड़ा पात्र लेकर आए हैं आप, हृदय का पात्र, उतना आप ग्रहण करोगे। और जितना छोटा पात्र है, जितना अज्ञान है, जितना पापी प्रवृत्ति है, उतना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए धाम में रहते हुए जब हम जप करेंगे तो खुशी की खबर भी बताना जरूरी है ना आपको। खाली वार्न करने से फायदा क्या है, डराने से क्या फायदा है? इस धाम में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो बंबई में नाम लेंगे तो एक फायदा होगा आपको, लेकिन यहां पर लेंगे 1,00,000 गुना फायदा होगा। बोलो हरे कृष्णा। 1,00,000 बार हरे कृष्णा बोलने का लाभ आपको मिल गया, क्योंकि आप वृंदावन बरसाना धाम में बैठे हो, ऊपर से कार्तिक महीने में आए हो, उसका भी कुछ हजारों गुना लाभ है। लाभ ही लाभ है, मतलब पूरी लॉटरी आपको। तो बंबई में आलस करते हो यहां मत करना, यहां पर भगवान का नाम लेने से 1,00,000 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। जो भी आप करेंगे, एक कथा सुनेंगे 1,00,000 कथा सुनने का लाभ मिलेगा, एक दर्शन करोगे 1,00,000 दर्शन करने का लाभ मिलेगा, सेवा करोगे 1,00,000 बार सेवा करने का लाभ मिलेगा। जो भी भगवान की सेवा में आप पॉजिटिव काम करोगे 1,00,000 गुणित आपको लाभ मिलेगा। तो बोलो सब लोग तैयार है क्या? तो उत्साह से भाग लेना होगा, तभी 1,00,000 आपके खाते में जमा होते जाएगा। तो ये हुआ धाम के लिए तैयारी। और लास्ट लाइन क्या है? हम सब लोग धाम में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आए हैं, हम सब लोग धाम में भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए आए हैं, हम सब धाम में भक्तों का संग करने के लिए आए हैं। भगवान ने जो प्रेम से लीलाएं की, उनका प्रेमी भक्तों के साथ में दर्शन करने के लिए और सुनने के लिए आए हैं। और हमारे यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई बोलेगा मथुरा का पेड़ा खाने के लिए आए हैं? नहीं, उसके लिए नहीं आए हम लोग। मिलेगा तो अच्छा ही है, और भी कुछ, आज गुलाब जामुन तो मिला ना आपको, वैसे मिलते रहेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग नहीं आए, ये ध्यान रखना। 7 दिन रहना है यहाँ पर, तो शरीर चलाने के लिए भोजन भी करना है, सोना भी है, इसलिए उसका इंतजाम है। लेकिन सोने के लिए और वो खाने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, वो एक दुयम पर्पज है जो मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इसलिए उन बातों पर दुखी मत होना। हाँ, कथा कम सुनने को मिली, जरूर दुखी होना। कथा में नींद आई, जरूर दुखी होना। तो कथा का एक नियम है, जैसे मैंने बताया, एक नियम, कथाकार के ऊपर नहीं बैठना है, कथाकार के पीछे नहीं बैठना है, और कथा में सोना नहीं है। जिसको नींद आती है, नींद आना स्वाभाविक है, देखो कलयुग में ना क्या कहते हैं उसको, मंद भाग्य सुमंद मतयो, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कला वस्मिन युगे जनहा, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुतः। ये किसका वर्णन किया जा रहा है? ये सब हम लोगों का वर्णन किया जा रहा है, संस्कृत में एकदम शुद्ध भाषा में। मंद, सब लोग डल हैं इसमें। सुमंद मतयो, यानी मति जो है ना वो अति मंद है, सबकी एकदम ढीली और स्लो। और मंद भाग्य, सब लोग बहुत बैड लक है, एवरीबडी दुर्भागी। और उपद्रुता ही उपद्रुता, मतलब क्या, हमेशा त्रस्त रहते सब लोग, परेशान रहते हैं। जाके बीरा रोड में, दादर में स्टेशन पे खड़े रहो, सबके चेहरे देखो, एवरीबडी परेशान, नोबडी इज हैप्पी, है ना? सही बात है कि नहीं? जहां जाओ झगड़ा करने के लिए तैयार, पाव रखो झगड़ा, हाथ लगाया धक्का झगड़ा, सब लोग परेशान रहते हैं। ये भागवत में लिखा है, ट्रेन में लिखा नहीं है, भागवत में लिखा है। हाँ, और प्रायण अल्पायुषा मतलब सबकी आयु बहुत कम है इसके अंदर, 50 में आदमी मर रहा है, 25 में भी हार्ट अटैक से मर रहा है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कला वस्मिन युगे जना, ये सब हमारे कलयुग के लोगों का वर्णन किया है इसके अंदर। तो इसलिए इस भाग्य को अगर दुर्भाग्य को मिटाना है और इस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में भी सद्भाग्यपूर्ण बनना है तो भगवान का नाम लेना है। बार बार कहा जाएगा क्योंकि बार बार, अरे भगवान ने अगर 3 बार कहा है तो मुझे तो 3 बार कहने का अधिकार है कि नहीं। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, ऐसे भगवान ने कलि संतरण उपनिषद में लिखा है। और भी 3 बार 31 कही है, कलौ यानी कलयुग में नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, नहीं है नहीं है नहीं है, इसके अलावा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है नहीं है नहीं है, 3 बार कहा गया है। 3 बार कभी किस बात को क्यों कहते हैं? जो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको बार बार दोहराया जाता है, अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड में टाइप करते हैं, बड़े फॉन्ट में टाइप करते हैं, करते कि नहीं आप लोग? करते कि नहीं? एग्जाम में पढ़ना है तो कैसे अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, बाकी सब भूल जाओ लेकिन अंडरलाइन को मत भूलो, अधोरेखित जो किया है उसको मत भूलो। उसी तरह से सबसे बड़ा अधोरेखन किसके लिए किया है? भगवान के नाम को। बाकी अगर कुछ भी नहीं कर पाए, जो 6 में से 5 नहीं जमा आपको, एक तो जमना ही चाहिए, अगर एक भी नहीं जमाना इधर ही रहो, फिर कहीं मुक्ति भक्ति होगी नहीं आपकी। एक अगर नहीं पकड़ा आपने तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, यात्रा व्यर्थ होने का सवाल ही नहीं, यात्रा भी व्यर्थ है, जीवन भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए यहां से जाते वक्त अगर आपको नाम के प्रति जप करने की इच्छा अगर दृढ़ हो गई आपकी, तो भी एक प्रमाण है सर्टिफिकेट का, 1 more tick कि आपकी यात्रा सफल है। ये पहले ही बताना जरूरी है, आपको अपने आप का खुद का टेस्ट लेना है और खुद को खुद ही मार्क देना है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी यात्रा कितनी सफल होगी। ठीक है, अभी दूसरे विषय पे आते हैं। तो दूसरा विषय यह है कि वृंदावन धाम क्या चीज है जहां पर आप आए हो। देखो बहुत सारे धाम हैं, 4 धाम बताए गए ना, बद्रीनाथ ऊपर है, पूरब में जगन्नाथपुरी है, और दक्षिण में रामेश्वर है, पश्चिम में द्वारका है, बीच में अयोध्या है, और बहुत सारे धाम हैं। वो सब धाम में भगवान भगवान बनकर आते हैं और सब उनको भगवान के रूप में पहचानते हैं, है ना। फिर 4 भुजा वाले के 2 भुजा वाले हैं, लेकिन सब लोग ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद ऐसे उनका पूजन करते हैं। लेकिन वृंदावन धाम एक ही धाम है जहां पर भगवान भगवान बनकर नहीं आते, उनको भी छुट्टी चाहिए भगवान से होने से। सब जगह पूजन पूजन ही होता है तो उनको भी बोर हो जाता है, तो वो वृंदावन धाम में आते हैं, अपना भगवान का जो पद है वो छोड़कर आते हैं। एक सामान्य फ्रेंड, एक सामान्य पुत्र, एक सामान्य बॉयफ्रेंड, सामान्य गौ पालन करने वाला गोपाल गौड़ी बनकर आते हैं। तो यहाँ के कोई भी धामवासी जो भगवान थे यहाँ पर, कभी वो जानते नहीं थे कि हमारा पुत्र भगवान है, उसको डांटते थे, उसको बांध के रखते थे, कई बार डराते थे, उसको धमकाते थे सब फ्रेंड लोग, मैया भी डांटती थी उसको, पता नहीं था उनको। एक बार मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो मैया बोले अरे बाप रे, ये मेरा बालक है नहीं, ये तो भगवान है। तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, भगवान ने मुंह बंद कर दिया, बोले ये मुझे पसंद नहीं है, ये प्रार्थना सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं एक सामान्य बालक बनकर माँ का प्रेम लेने के लिए आया हूँ, और माँ ही मुझे पूजा करने लगेगी तो क्या फायदा। फिर बंद कर दिया मुंह, माँ भी भूल गई सब, गले लगा लिया, स्तनपान कराया उसको। तो ये विशेष बात है, यहाँ पर जो परम भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो यहाँ पर भगवान बनकर नहीं आए हैं, नहीं तो वो चोरी नहीं करते ना, कपड़े नहीं चुराते किसी के, दिल नहीं चुराते वो 3 चीज चोरी करते हैं, पहले माखन चोरी करते थे बचपन में, उसके बाद में कपड़े चोरी करने लगे, और सबके एंड में सबका दिल भी चोरी करने लगे। हाँ, तो ऐसा व्यवहार भगवान करते हैं कभी, लेकिन वो यहाँ पर आके करते हैं। सारे वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर वो गोपियों का छास चुरा चुरा कर खाने के लिए आते हैं। वो कहते भी हैं कि मुझे वैकुंठ के ऐश्वर्य में इतना इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर क्या कमी है वैकुंठ में, इतना ऐश्वर्य संपन्न धाम है भगवान का विष्णु का, वो छोड़कर वो यहाँ पर आते हैं, और वो सब कुछ उनका ही है, फिर भी गोपियों के घर जाकर चुरा चुरा कर खाने में उनको आनंद आता है। तो ये विशेष धाम है, ध्यान रखना। दूसरी बात, आप कहीं भी जाओ वैकुंठ में, द्वारका में जाओ, रामेश्वर में जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, आपको भगवान के चरणों की धूल नहीं मिलेगी। बताओ क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सब जगह वो चप्पल पहनते हैं रत्नों से भरा हुआ। जब चलने का दिल आया सर्वेंट लोग तुरंत चप्पल लेके आते, और जब चलने का प्लान हुआ सब जगह मखमल बिछाया हुआ है जमीन के ऊपर। और अगर आगे घूमने का इच्छा हुआ तो रथ तैयार है, मतलब चप्पल पहन के मखमल के ऊपर चलकर रथ में बैठेंगे और अगली जगह जाएंगे, वहां पर भी मखमल है ही, चप्पल भी है, तो जमीन का और भगवान के पैर का संपर्क ही नहीं है। तो चरण धूलि कैसे बनेगी बताओ? चरण धूलि कब बनती है? जब आप नंगे पैर चलोगे, जमीन को स्पर्श करोगे, तो आपके चरणों की धूल बनेगी उधर। वो चरणों की धूल केवल यहाँ पर है, क्योंकि वृंदावन धाम में जब भगवान जब आए तो चप्पल पहनकर नहीं आए, यहाँ पर नंगे पैर घूमे, कोई अलंकार नहीं पहना, मोर मुकुट पहना उन्होंने, वनमाला पहनी और सब जगह विहार किया उन्होंने। राधा रानी ने भी ऐसा ही किया, ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। और सारे देवता लोग जितने भी है, जितने भी संत महर्षि, जितने भी भगवान के भक्त है, वो सब लोग वृंदावन धाम में आते हैं उनके चरणों की धूल लेने के लिए, क्योंकि यहीं पर अवेलेबल है वो, और किधर अवेलेबल नहीं है पूरे विश्व में। और वो भगवान जो जिनके चरणों की धूल सब लोग लेने के लिए ये वृंदावन धाम में आते हैं, वो भगवान स्वयं किसी की धूल लेने के लिए बरसाने आते हैं, वो कौन है? वो है राधा रानी। वो उनकी आराध्या है, मतलब वो उनका आराधन करते हैं। इसलिए जिनकी धूल सबको वांछित है वो अपने आराध्या की धूल लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसलिए ये धाम वृंदावन से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर परम भगवान परात्पर गोलोकेश्वर भगवान जो है वो खुद भी साधना करने के लिए आते हैं। और विशेष बात यह है कि बरसाना धाम में भगवान पुरुष का शरीर भी छोड़ के आते हैं, सखी बनकर आते हैं, सखी वेश धारण करके आते हैं। बरसाने में किसी को प्रवेश नहीं है सखी वेश धारण के बिना, ऐसे दिव्य धाम में हम लोग आए। गोलोक धाम आपने सुना होगा ना, गोलोक धाम। गोलोक धाम क्या चीज है? भगवान का परम धाम है, सर्वोच्च धाम है आध्यात्मिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टॉप मोस्ट है वो। लेकिन उधर दो चीजें नहीं होती है, किसी को पता है? दो चीजें वहां पर नहीं होती है, एक उनका बाल रूप का दर्शन वहां पर नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमेशा 16 साल के उम्र में रहते हैं वो, 1600 वर्षीय नवयुवक हमेशा उसी रूप में रहते हैं, नव यौवन अवस्था में रहते हैं। और दूसरा चीज वहां पर राक्षस नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के अंदर वीर रस भी है, 13 रसों के अंदर एक रस वीर रस भी है। भगवान को भी युद्ध करने की लड़ने की इच्छा होती है, लेकिन सब लोग फ्रेंड है तो लड़े किससे? सब लोग दोस्त होंगे तो लड़े किससे? लड़ने की इच्छा पूरी कहां होगी? तो उसी में से कुछ भक्त लोग यहाँ राक्षस लोग के जन्म लेते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं, जब धाम पृथ्वी पर अवतरित होता है भौतिक दुनिया में, जन्म मृत्यु वाले दुनिया में जब भगवान का धाम आता है उसमें भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान को वहां आनंद देने के लिए खरा खरा आनंद, हाँ एकदम सच्चा वाला आनंद, झगड़े वाला, युद्ध वाला, खूंखार, वीर रस वाला, तो कुछ लोग राक्षस बनते हैं, जैसे रावण है, कंस है, कुंभकर्ण है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, बहुत महान भयंकर राक्षस थे वो, अगासुर, कालिया, बकासुर, पूतना, चकटासुर, तृणावर्त, कितने नाम ले, ये सब लोग उनके भक्त हैं। लेकिन यहाँ राक्षस बनकर आते हैं और भगवान से दुश्मनी करते हैं और भगवान को उनको मारने का, वध करने का वीर रस का आनंद देते हैं। तो दो चीजें वहां पर गोलोक में नहीं है, जो तो यहाँ पर है, एक राक्षस का युद्ध और एक भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन, दोनों यहाँ पर है जो वहां पर नहीं है। उसके आगे देखो, ऐसा है ना कि ये धाम का जितना महिमा वर्णन करे उतना कम है, बहुत सारे विषय है वर्णन करने के लिए, लेकिन संक्षेप में आपको बता रहे हैं समय की कमी की वजह से कि आप सर्वोच्च धाम में आए हो। एक है मथुरा मंडल जहां पर भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद वो गोकुल में आए, गोकुल से बाद में यहाँ पर लीला किया वृंदावन में, उनके 137 प्रिय वन है उनके, यहाँ पर 137 में से 108 ज्यादा प्रिय है उनको, 108 में से 12 बहुत ज्यादा प्रिय है, और वो 12 में से एक वृंदावन सबसे टॉप पर है। और वृंदावन 20 कोस का है, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का है, और वो 20 कोस के वृंदावन में आज का जो भौगोलिक वृंदावन है, जोग्राफिकल वृंदावन, 281121 पिन कोड, वो भी है, यमुना भी पूरी है, गोवर्धन भी पूरा है, नंदगांव पूरा है, बरसाना पूरा है, जावट पूरा है, बीच में छाता बीता जो भी आ रहा है छठिकरा, वो सब वृंदावन धाम में आता है। लेकिन उसमें भी अंतर होता है, वो वृंदावन धाम के अंदर नंदगांव, बरसाना और जावट, ये जो एरिया है ये बहुत स्पेशल एरिया है, जैसे अंतरंग कक्ष है उसका। बाहर सब लोग भगवान राक्षस का वध किया है, गोकुल में पुतना का वध किया, शक्तासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, इधर आके बकासुर का वध किया, बहुत लोगों का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया गोवर्धन में, लेकिन नंदगांव, बरसाना और जावट में कोई राक्षस नहीं आया, क्योंकि राधा रानी का प्रभाव यहाँ पर है। राधा रानी के प्रभाव से कंस ने एक बार आने का प्रवेश करने का प्रयास किया था, तो वो कन्या बन गया था, स्त्री बन गया था कंस महाराज, दिग्विजयी सम्राट कंस, जिसने सभी राक्षसों को वश में कर लिया था, जिसका जिसका हम नाम जानते हैं वो सब कंस के अंडर थे। वो दिग्विजयी सम्राट कंस महाराज यहाँ पर आकर कंसनी गोपी बन गई, उसको मोटल्ली गोपी करके चिराया गया, क्योंकि मोटी, हे मोटल्ली गोपी आजा, थोड़ा कंबे कंडे वगैरह लिप लेना, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। 6 महीने तक यहाँ पर कन्या बनने के बाद में कंस ने 6 महीने तक गाय की सेवा किया है, कंडे लिपवाए उनसे, गोपियों ने हताली बजा बजा कर हंस हंस कर मजाक करते करते उनसे काम करवाया है। ये सब राधा रानी का प्रभाव है। और बाद में राधा रानी के पास लाया गया, उनको ऋषभानु महाराज ने विनती किया कि भाई ये हमारे राजा है, उनको हम टैक्स देते हैं हर साल में जाकर, हमारे वंदनीय पूजनीय राजा है, अभी आपके लिए सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, इनको हम टैक्स देने मथुरा जाते हैं, और ये अभी आपके चरणों में गिर रहा है, तो दया करो उसके ऊपर, छोड़ दो उसको। तभी कंस स्त्री के वेश में था, तब राधा रानी ने उंगली उठाई और कहा दोबारा अगर यहाँ आओगे तो परमानेंट कन्या बना दूंगी, तो हाथ जोड़कर माफी मांगी, कभी नहीं आऊंगा ना किसी को भेजूंगा, ये मेरा कुंड है, उधर एक कुंड है जावट में किशोरी कुंड, इसमें स्नान करो पुनः पुरुष शरीर प्राप्त होगा। तो छलांग लगाई वैसे के वैसे पुरुष बन गया, ऐसे भागा वहां से मथुरा तक, पीछे मुड़के भी देखा नहीं। क्यों नहीं देखा मुड़के? कहीं महारानी का मन चेंज हो गया तो, बीच में चेंज हो गया, नहीं रोको रोको इनको लड़के रहने दो, बहुत आतंकवादी है ये, इसको लड़के रहने दो अच्छा है, आतंक कम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये राधा रानी ने क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बरसाना, नंदगांव, जावट, यहाँ पर भगवान की सबसे अंतरंग, सबसे उत्कट, सबसे पावरफुल लीला जो है प्रेम की, वो यहाँ हुई है। ऐसी लीलाएं हुई है जो उसमें राक्षस आके बाधा नहीं डाल सकता है, वो लीला में व्यवधान नहीं हो सकता है। गौचारण कर रहे हैं तो राक्षस आ सकता है, उनको मार सकते हैं, लेकिन यहाँ की प्रेम लीला जब हो रही है उसमें राक्षसों का व्यवधान नहीं हो सकता है। तो राधा रानी ने अपने प्रभाव से कंस को कन्या बनाकर इशारा दे दिया, यहाँ पर नहीं आना है आपको, जो भी करना है उसके बाहर करो, बाहर आदमी को भेजो, लेकिन वन वे टिकट निकाल के भेजो, रिटर्न टिकट काम नहीं आएगा, यहीं पर मरना है उनको सबको यहीं पर मरना है, कोई गया वापस बताने के लिए क्या हुआ करके, जो भी आया यहीं पर मर गया, भगवान के शरीर में लीन हो गया वो। तो इस तरह से बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि आप सब लोग कार्तिक महीने में यहाँ पर आए हैं, भले आखिरी 3 दिन क्यों ना हो, लेकिन आप कार्तिक दामोदर मंथ में यहाँ पर आए हो। दामोदर मंथ जो है उसमें हम लोग दीप दान करते हैं, उस एक दीप में अनेक हजारों कल्प तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कल्प का मतलब जानते हो आप? एक कल्प का मतलब 4 युगों का एक संग्रह होता है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 मिलकर एक कल्प बनता है। एक कल्प जो होता है वो 43,20,000 साल का होता है, 43,20,000 ईयर्स का एक कल्प होता है। ऐसे 1,000 कल्प जब होते हैं तब कृष्ण का अवतार होता है। कितना रेयर है, मन में ना कितना दुर्लभ है ये। तो ऐसे दुर्लभ अवस्था में एक महीना है कार्तिक का, जिसमें अनेक कल्पों का एकत्र किया हुआ पाप हमारे सर पे जो पड़ा हुआ है वो सब जल जाता है। एक दीपक कृष्ण को, विष्णु को, या विष्णु को किसी रूप को दिखाने, नरसिंह भगवान को, वामन देव को, या किसी भी आपको प्रिय जो भगवान का रूप होगा, किसी विष्णु अवतार को आप, कृष्ण को या विष्णु अवतार को अगर आप एक दीपक दिखाओगे इस महीने में एक बार भी, तो अनंत कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग रोज दिखाते हैं, तो आप बोले सर पहली बार तो किया ना एक दिन सुबह तो सब पाप नष्ट हो गया, अभी क्यों दिखा रहे हैं सब, बताओ क्यों दिखा रहे। अरे पाप नष्ट करना ही जीवन का कोई पर्पज नहीं होता है, वो तो नेगेटिव चीज है। अगर आपने घर को साफ सफाई किया तो कोई बड़ा काम किया क्या? साफ घर में रहना है ना आपको, कि साफ ही करते रहेंगे रोज? साफ क्यों करते हैं? अगर आपको रहना है उस घर में, उसी तरह से पाप को नष्ट क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है आपको। तो आपने एक बार जो दीप दिखाया कार्तिक में सब पाप नष्ट हो गए, बाकी अनंत बार जो दीपक दिखाया उससे हम भगवान का प्रेम निर्माण करना चाहते हैं, प्रेम का दीपक हृदय में जलाना चाहते हैं, इसलिए भगवान को दीपक दिखाते हैं। आप जितना दीपक दिखाओगे ना वो सारा जो कैंडल पावर है उसका भगवान उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ये जोक नहीं है, सीरियस बात है। आपने जितनी बार जितने बड़े बड़े दीपक भगवान को कार्तिक में अर्पण किए उसकी कितनी कैंडल पावर लाइट की भगवान सब स्टोर रखते उसका, ये कार्तिक में कितना किया, पिछली बार कितना किया था, अगले बार कितना करेंगे। और जितनी पावर लाइट की है वो आपको एंड में लाभ आता है उसका, कभी जब आप गौलोक धाम में जाएंगे तो आपका सारा रास्ता उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। हरे कृष्णा। इसलिए आपके एक एक दीपक का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है, जितना प्रकाश आप निर्माण करते हो और उसके साथ प्रेम भक्ति के साथ उनको अर्पण करते हो। तो ये कार्तिक महीना बहुत पावरफुल है, हमको दुख है कि 12 तारीख को समाप्त हो जाएगा, उसके आगे इसका एक लक्ष्य वाला परिणाम, हजारों कल्पों वाला परिणाम भी नष्ट हो जाएगा। लाभ होगा लेकिन वो कार्तिक वाला लाभ नहीं होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा दुख करते हैं उसमें। अरे 12 तारीख को लास्ट है, दिन में 50 बार दीपक घुमा देते हैं, पता नहीं अगले साल तक जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, जब कार्तिक आएगा तो हम दीप दान करेंगे। इसीलिए आपके आनंद के लिए आपको होल सेल में ये दीप दान का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए आज हमने गहवर कुंड में दीपोत्सव का आयोजन किया है। पूरे गहवर कुंड में दीपक जलाएंगे और फिर दामोदर अष्टकम गाएंगे, भगवान को दीप दान करेंगे। हमारा विचार ऐसा है कि जितने लोग अभी इतना समय निकालकर छुट्टी निकालकर और इच्छा लेकर और त्याग करके मुंबई का सब सौख्य और आनंद त्याग करके यहाँ पर आए 8 दिन के लिए, तो आपको होल सेल में लाभ मिलना चाहिए भगवान के धाम में। और कोई आपके हाथ से अपराध नहीं, हमारी प्रार्थना यही थी संकल्प में कि आपको भर भर के लाभ मिले और कोई अपराध ना आपके हाथ से हो, और यहां से आप ऐसा धन लूट कर ले जाए तो जिंदगी भर काम आएगा आपको, पूरा जीवन आपका उसमें तर जाएगा, ऐसा लाभ इस कार्तिक महीने में यहां आने से है। इसलिए हमने बरसाना चुना है क्योंकि वृंदावन धाम आज की तारीख में बहुत भीड़ वाला है, वो टैं टैं टू टू चलता है वहां पर, बहुत ट्रैफिक होती है, एक शाम को जाएंगे दर्शन करने के लिए तो 2 दिन निकल जाते हैं। तो हमने सोचा कि शांति में रहे, आराम से रहे, थोड़ी सी सुविधा कम मिलेगी लेकिन कोई टेंशन नहीं है आपको यहाँ पर। यहाँ से सब स्थान पास में है, कामेवन पास में है, गोवर्धन भी पास में है, नंदगांव पास में है, सब पास पास में, गांव गांव में आपको बहुत स्थान देखने को मिलेंगे। वहां पर चार के जगह एक ही स्थान मिलेगा, इतना टाइम गर्दी लगेगी, यहाँ पर आपको सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और ये राधा रानी का धाम है जहाँ कृष्ण भी दौड़ कर आते हैं। तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। क्या बोला मैंने? तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। आगे सुनो। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, तेरे द्वार पे लो दौड़े आएंगे, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। सभी कष्टों का इलाज राधा रानी के धाम में है, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। लाडिली यानी राधा रानी का नाम है लाडिली, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। तो जो बेसहारा है, जो दुखी है, सब बरसाने में आते हैं और दुख दर्द से मुक्त हो जाते हैं। तो आप लोगों को बधाई हो, आप बरसाने में आए हो, राधा रानी के धाम में आए हो। अपने चित्त को वो है ना, वो ट्यूनिंग, वो एकदम फाइन ट्यूनिंग करके रखो, यहाँ वहाँ कांटे को भगाओ मत, वो लाल होता है ना कांटा रेडियो में, था ऐसा यहाँ से हाँ ऐसे ऐसे करते ना, उसको एक बड़ा होता है वो बहुत जल्दी घुमाता है, एक होता है छोटा सा वो उसको गोल गोल घुमाते हैं, घूमता ही नहीं है वो, धीरे 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 घूमता है। तो ये घुमाओ बाकी इसको घुमाओ, एकदम परफेक्ट पॉइंट पे ला के रखो उसको, ताकि केवल राजा रानी की आवाज सुनाई पड़े और दुनिया की आवाज नहीं सुनाई पड़े। कृष्ण का ही नाम जपे, राधा रानी का ही नाम सुनाई पड़े, उनकी कथा सुने और कुछ सुनाई न पड़े, और सुनकर भी अनसुना करे, ऐसी अवस्था आपकी होनी चाहिए जब आपका फाइन ट्यूनिंग सबसे बढ़िया हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, जहां पर आप बैठे हैं देखो महाराज जी खड़े हो, ये प्रियेश्वर महादेव का मंदिर है जिस जगह आप बैठे हुए। शंकर जी भगवान राधा रानी का जन्म होने के बाद में यहाँ पर आए थे और राधा रानी ने उनको दर्शन दिया था और आशीर्वाद दिया था कि आप यहीं रहो मेरे धाम में। शंकर भगवान आए ही उसी के लिए थे, उनको यहीं पर बसना था। तो जो शंकर भगवान यहाँ बसे उनका नाम है प्रियेश्वर महादेव। और ये जो कुंड है पीछे, उसकी कथा तो बताई नहीं आपको मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ का महात्म्य बताना जरूरी है ना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा ऐसे। ये प्रिया कुंड है, राधा रानी का एक नाम है प्रिया, तो प्रिया जी का कुंड है ये। वैसे उनके पिताजी का कुंड है, लेकिन पिताजी का कुंड मतलब बेटी का भी कुंड हो गया ना, तो उनका नाम है प्रिया कुंड, वैसे वृषभानु कुंड भी कहते हैं उसको। अभी बहुत लंबी लंबी कहानी है, बच्चों को शांति रखो जरा। तो लंबी लंबी कहानी को छोटे बताते हुए, सबसे पहले यहाँ पर राधा रानी को नंदगांव में यशोदा माई ने प्रेम से एक बार हल्दी लगा दिया। हल्दी लगाने का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट, शादी नहीं, शादी होने का निश्चय, वांग निश्चय कहते हैं उसको। तो लंबी कहानी है, लेकिन राधा रानी को यशोदा रानी ने एक बार नंदगांव में प्रेम से गले लगाकर, अश्रु बहाकर प्रेम से गले लगाकर हाथ में हल्दी लगा दी। फिर वहां से कैन आई हैव साइलेंस प्लीज, जिनके बच्चे वो है उनको, उनका कर्तव्य है उनको रुकाने का, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो फिर आपका नुकसान होगा ना। तो फिर वो यहां पर आई, यहां पर आए तब हवा में थे, यहां पर जमीन पे आए, क्योंकि अभी मां को क्या कहेंगे कि कुछ काम के लिए भेजा था तो हाथ पीले करके आ गई, यही संस्कार है बरसाने के, ऐसे मां डांटेगी ना, डरने लगी, डर के यहां पर आई कुंड पे, पिताजी का कुंड है ना, रोज स्नान करते हैं। तो सखियों ने कहा कोई बात नहीं, अपना यहाँ हाथ धो लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, खाली हमको ही पता है ना, और किसको बताए। तो यहाँ हाथ धो लिए, तो जब यहाँ हाथ धो लिए हल्दी के, तो ये कुंड पीला हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा पीली पोखर, पोखर का मतलब वाटर पॉन्ड, जलाशय, सरोवर, तो इसका नाम पड़ा पीली पोखर। उसके बाद में बड़ी लंबी लंबी कथा है, लेकिन छोटे से बताने के लिए, उसके बाद कृष्ण यहाँ घूमते घूमते आए तो देखा, तो पहले तो पानी साफ था, पीला कैसे हो गया? तो वो ऐसे पूछते पूछते पानी में उतर गए। क्या पूछ रहे थे? कि पीली वस्तु क्या है? ऐसे पूछते पूछते पानी में उतर गए, और खुद जब बाहर आए तो वो भी पीले हो गए, फिर भी पूछ रहे हैं पीली वस्तु क्या है, यानी कि राधा रानी का प्रेम वो पीली वस्तु है। तो पीला रंग राधा रानी का प्रेम है, तो कृष्ण पर भी चढ़ गया, तो कृष्ण भी भाव विभोर हो गए और खुद पूछने लगे वो श्याम सुंदर कहाँ है, वो कृष्ण कहाँ है, मुझे उसे मिलना है। तो सखा लोग बोल रहे तुम ही कृष्ण हो, तुम किसको पूछ रहे हो, नहीं नहीं मुझे कृष्ण से मिलना है। मतलब क्या हुआ, वो राधामय हो गए, राधा रानी के प्रेम से राधामय हो गए और कृष्ण के लिए व्याकुल हो गए वो। तो एक तरह से राधा रानी का जो प्रेम है वो समझने के लिए व्याकुल हो गए, इसलिए उन्होंने एक अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु का, ये समझने के लिए कि राधा रानी का प्रेम क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका सार क्या है, उसको समझने के लिए कृष्ण भगवान आगे कलयुग में अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। दो लीला हो गई ना, एक हाथ पीले, हाथ पीले धो लिए तो पीला हो गया, फिर कृष्ण पीले हो गए, फिर तीसरा लीला ऐसा है कि होली का निमंत्रण देने के लिए पांडे ब्राह्मण नंदगांव से यहाँ पर आता है इस जगह पर निमंत्रण देने के लिए, तो सब सखियां उसको कलर से धो देती है। तो राधा रानी बाद में आती है, अरे कहती है बेटा, दोस्तों को कहती है अपने सखे सखियों को, अरे वो तो निमंत्रक है, जिसका निमंत्रण लेके आया वो आएगा तब उसको बिगाना, इसको क्यों बिगा रहे हो, ये बेचारा ब्राह्मण है, तो मैसेंजर है। तो बड़ी दया से सखियों के चंगुल से उस पांडे को राधा रानी ने बचाया, बाहर निकाला उसको और घर पे ले गई, माफी मांगे कि मेरी सखियां बहुत नादान हैं, उनका बुरा नहीं मानना, अपराध मत लेना। घर पे गई, उसको गर्म पानी से स्नान करने की व्यवस्था की, पिताजी के बहुत सुंदर वस्त्र निकाल के, राज वस्त्र निकाल के दिए, भोग लगाया, आरती पूजा की। तो मैया आई कि अरे नंदगांव से निमंत्रण देने के लिए आया होली के लिए, किधर है वो ब्राह्मण? तो उसके मुंह में लड्डू खिलाया उन्होंने, प्रेम से, आनंद से, एकदम भाव से। उसको कहते लड्डू मार होली, उसी के उपलक्ष्य में अभी लड्डू फेंक के मारते हैं, लेकिन राधा रानी की माँ ने उस ब्राह्मण के मुंह में लड्डू खिलाए थे। तो वो लीला भी यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर आके उनको सखियों ने रंग से धो दिया था। अगले दिन अष्टनवमी के दिन, यहाँ पर कौन सा महीना है वो, फाल्गुन शुद्ध नवमी के दिन रंगीली होली यहाँ पर, यहीं पर शुरू होती है। ये भी विशेष है, यहाँ पर होली की लीला का शुरुआत हुआ है। और यहाँ पर कृष्ण को उन्होंने होली में बंदी बनाया है, परास्त किया है, और उसके मुंह काला किया है काजल से, उसका जो खेस है उसको खींचकर उत्तरीय वस्त्र को खींच लिया है, और उसके पीठ पर गाली लिख के उसको भेज दिया है। ये जगह है वो। इसी जगह पर और एक लीला हुई है, नारद मुनि एक बार राधा रानी का दर्शन करने के लिए आए थे, ढूंढ ढूंढ कर आए थे। तो राधा रानी यहाँ खेल रही थी, उसके हाथ में कुछ मेवा थे, तो बाबा ने जब देखा तो एकदम भाव विभोर हो गए नारद मुनि जी। तो उन्होंने उनको वो मेवा दिए, मेवा लेकर खाए तो और भाव विभोर हो गए, और एकदम बड़ी बड़ी आंखों से राधा रानी को देखने लगे। तो राधा रानी डर गई कि भाई कौन बाबा आयो है, दूर दूर से देख रहा है। तो भाग गई अपने घर पे, बोले मैया को, बोली कि बाबा कोई आया घूर घूर को देख रहा है। तो मैया ने बताया, अरे वो बाबा कोई दुष्ट बाबा नहीं है, वो नारद मुनि है, तुम्हारे जन्म के समय पे गंडा लेकर वही आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था तुमको, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बंद आंखें खुली थी, ऐसे ही उन्होंने वर्णन किया। तभी फिर नारद मुनि और राधा रानी ने दर्शन किया उनका। तो कितना लीला बताया मैंने यहाँ का आपका, पहला राधा रानी के हाथ पीले यहाँ पर धोए गए, उसके बाद में कृष्ण पर यहाँ पर आए और वो पीले हो गए, उसके बाद तीसरा क्या हुआ, पांडे ब्राह्मण यहाँ पर आया निमंत्रण लेकर, चौथा क्या हुआ, होली का लीला आरंभ यहाँ पर हुआ, पूरा होली का लीला यहाँ पर हुआ है, और पांचवा नारद मुनि यहाँ पर आए हैं, और छठवा शंकर जी महाराज हमारे महाराज के मंदिर में विराजमान है, त्रेश्वर जी महाराज। तो अभी यात्रा में समय मिलेगा तो ये पांचों लीला मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। आपके लिए एक ही काम करना है, आपको जगह रहना है बस, आप जगह रहेंगे तो मैं अनंत कथा सुनाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम यहाँ से श्री जी के मंदिर में जाएंगे, हाँ वहां पर क्या क्या देखना है आपको बताता हूं मैं। श्री जी के मंदिर में उठना नहीं, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, थोड़ा रुको। श्री जी का मंदिर जो है वो ब्रह्मा जी के चार शीर्ष हैं, उसका एक शीर्ष है भानुगढ़, जहां पर श्री जी का महल है, जहां पर राधा रानी का मंदिर है। उसके पहले जाएंगे मंदिर में ऊपर चढ़ के तो कामधेनु के थन का दर्शन है, कामधेनु का दर्शन है, लिख लेना तो वहां जाके भूल जाएंगे क्या देखना है। दूसरा दर्शन है राधा रानी के चरण चिन्ह का, ब्रह्मा जी के मूर्ति के नीचे राधा रानी के चरण चिन्ह का दर्शन है, फिर ब्रह्मा जी का दर्शन है, फिर एक मार्बल की छतरी है उसमें राधा रानी साल में तीन बार नीचे आती है, हरियाली तीज, राधाष्टमी और होली, वो मंदिर नीचे है। उस मंदिर में जब राधा रानी आती है तो लड़कियां उनकी पूजा करती है, उसको आरता कहते हैं, और साल भर जो आदमी उनकी पूजा करते हैं उसको आरती कहते हैं, है समझ में। जब मार्बल के मंदिर में नीचे आती है तो गोस्वामी पुरुष की कन्या जो है वो उनकी आरता करती है, आरता, और साल भर में जो चलता है गोस्वामी के हाथ से उसको आरती कहते हैं। फिर आप ऊपर जाएंगे तो लाडली लाल का दर्शन है, लाडली यानी राधा रानी, लाल यानी कृष्ण, उनका दर्शन है। और उसके पीछे जाएंगे तो राधा रानी खड़े होकर नंदगांव में कृष्ण को इशारे करती थी, वो स्थान है जहां पर उनके चरण चिन्ह है। इतने स्थानों का आपको राधा रानी के मंदिर में दर्शन करना है। फिर आगे जाकर क्या दर्शन करना है वो बताता हूँ, वो लिख के लो। आगे जाकर कुशल बिहारी मंदिर का दर्शन करना है, उसके आगे जाकर दानगढ़ पे दान बिहारी का दर्शन करना है, उसके आगे जाकर मोरकुटी का दर्शन करना है, और मोरकुटी से आपको नीचे उतरना है और गहवर कुंड का दर्शन करना है, जहां पर आज रात का संध्या का दीपोत्सव मनाया जाएगा। बाकी सारी कहानी मैं आपको उतरने के बाद में बताऊंगा। जय जय श्री राधे।